ओम शांति। किसी एक शहर में दो चोर मित्र भी थे और एक दूसरे से ईर्ष्या भी बहुत करते थे और बहुधा ये देखा गया है कि जहां पर बहुत अधिक मित्रता होती है वहां ईर्ष्या साथ साथ चलती है, मित्रता भी और ईर्ष्या भी। एक रात एक चोर एक सोने का कप कहीं से चोरी करके लेके आया तो दूसरे ने पूछा, ये कप तुमको कहां से मिला? उसने कहा, शहर के बाहर एक झोपड़ी है और वहां एक फकीर रहता है और ये सोने का कप मैंने उसकी झोपड़ी से चुराया। दूसरा मित्र पूछता है, दूसरा चोर, पर उसके पास ये कप कहां से आया होगा? तो पहला मित्र चोर कहता है, उसके बहुत भगत है, दिया होगा किसी ने, बहुत महंगी महंगी चीजें उसको लोग लाकर देते हैं, परंतु मैंने देखा कि वो फकीर इन सब से परे है, जरा भी आसक्ति नहीं है। तो पहला दूसरा जो चोर होता है उसको और ईर्ष्या हो जाती है कि इसको इतना अच्छा मिल गया, तो वो झूठ मूठ कहता है, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उस फकीर से सीखता और ये कप उसको वापस लेके जाके दे देता। कैसा उसका जीवन है कि यहां की किसी वस्तु से उसे मोह नहीं, वो झूठ झूठ कहता है, क्योंकि उसका जो दोस्त है उसे वो मिल गया है जो उसे कभी नहीं मिला था। तो जो पहला चोर होता है उसके भी दिल को ये बात लग जाती है, वो सोचता है कि मुझे भी वापस देना चाहिए। और जो दूसरा चोर होता है वो कहता है, अगर मैंने ये कप चुराया होता तो मैं कल सुबह जाकर वापस दे दिया होता। तो पहला कहता है, तुम तो कल सुबह गए होते, मैं अभी जा रहा हूं, और वो तभी के तभी वापस जाता है उस फकीर के पास। फकीर ध्यानमग्न बैठा हुआ है और वो पहला चोर फकीर से कहता है, मेरा एक प्रश्न है, मैं दिन भर बहुत व्यस्त रहता हूं इसलिए रात में आया हूं, और प्रश्न ये है, मेरे बारे में नहीं है, मेरे मित्र के लिए, वो भी अपने लिए नहीं कहता है, झूठ बोलता है, कहता है मेरा एक मित्र है, उसने एक बहुमूल्य वस्तु कहीं से चोरी करके लाई है, उसे क्या करना चाहिए, और उसे दुख हो रहा है, पश्चाताप कैसे करे? तो फकीर कहता है, उसे उस व्यक्ति को वापस दे देनी चाहिए जिससे उसने चुराई। फिर से ये प्रश्न पूछता है, अगर वो सामने वाला व्यक्ति जिससे ये चुराई गई उसको वो वस्तु चाहिए ही नहीं हो तो? तो फकीर कहता है, वो वस्तु फिर उसी की हो गई, उस चोर की। फिर ये चोर कहता है कि मैंने आपके कुटिया से ये सोने का कप चुराया है, मैं क्या करूं, मैं आपको वापस देने आया हूं। वो कहता है, अच्छा, ये कप मेरी कुटिया में है। उसे ये भी नहीं पता कि उसके पास ऐसा कोई कप था, क्योंकि लोग ढेर सारी चीजें लाके रखते हैं, उसका इसका भी ख्याल नहीं है कि वहां कौन कौन सी वस्तुएं है और कौन कप चोरी करके गया। तो वो कहता है, मुझे इन किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसको आप ही रख लो। चोर कहता है, मुझे ये चोरी अब छोड़ देना है, ये आप रख लीजिए। फकीर कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और जब ऐसी और आसक्त वृत्ति देखता है वो चोर, तो वास्तव में वो छोड़ देता है चोरी करना। एक सूक्ष्म परिवर्तन वहां आ जाता है और वो उस कप को लेकर वापस आ जाता है। जब दूसरा चोर देखता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, उसको ईर्ष्या और बढ़ जाती है। एक तरफ तो दो व्यक्ति मैत्री और मैत्री होने के बीच में भी ईर्ष्या, और दोनों ने ही उस चीज को देखा कि एक कप वहां से लाया गया, एक योगी एक फकीर के घर से, और कितना वो योगी अनासक्त है। दूसरा जो मित्र था उसमें ईर्ष्या और बढ़ गई जब उसने देखा कि कप तो इसी को वापस मिल गया, और पहला जो था वो अपने मन के सूक्ष्म संकल्पों के आधार पर एक ऐसे परिवर्तन की अवस्था में आ गया कि उसके बाद में उसने चोरी करना ही छोड़ दिया। इस कहानी को विदेश में कई बार सुनाई जाती है, इफेक्ट ऑफ जेलसी एंड इफेक्ट ऑफ गुड कंपनी, इस आधार पर कि महान आत्माओं का थोड़ा भी संग दूसरी आत्माओं में परिवर्तन को जन्म दे देता है। उस फकीर ने कुछ खास सिखाया नहीं, पर उसकी अनासक्त वृत्ति ने बहुत कुछ सिखा दिया। इसलिए वो चोर तो रूपांतरित हो गया और उसे वो कप भी मिल गया। इसके कई सारे आयाम हैं, कई सारी दृष्टि से इसको देखा जाता है। तो कल भी बाबा ने कप की बात की थी, कौन से कप की? गोल्डन कप। बाप गोल्डन कप बनवा रहे हैं, किसको मिलेगा ये? मुरली में क्या था, किसको मिलेगा? दिल्ली वालों को तो कहा ही, पर फिर भी आगे और कहा, किसको मिलेगा? डबल तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। किसको मिलेगा? डबल तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, डबल विदेशियों से मुलाकात। एक है पुरुषार्थ, एक है तीव्र पुरुषार्थ, और बाबा ने क्या कहा? डबल तीव्र पुरुषार्थ। जो ये करेंगे उनको ये मिलेगा। तीन प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की, स्व परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तन, विश्व परिवर्तन। दो शक्तियों की चर्चा की, दृढ़ता की शक्ति और परिवर्तन की शक्ति। डबल कार्य करने आए हो, कौन से डबल कार्य? एक बधाई और दूसरा विदाई। तो आज हम कल जो व्यक्तवाणी चली 31/12/2006 की, 31 December 2006 की रिकॉर्डेड मुरली, ओरिजिनल मुरली तो बहुत बड़ी है, उसमें से टुकड़े टुकड़े थोड़ा 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 लिया गया है। तो क्या कहा बाबा ने, पहले आप बताएंगे फिर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या किस किस को याद है, क्या कहा बाबा ने? शिव शक्ति बन के प्रत्यक्ष करना है। और नया साल नहीं देख रहे, नया युग देख रहे, और नवयुग रचेता, और चैरिटी बिगिंस एट होम, और इधर बहनों की तरफ दृढ़ता से परिवर्तन का संकल्प करना है, और नया चमकीला शरीर ड्रेस देखना है, कारण को निवारण, समस्या को समाधान, समाधान और समाधि दोनों शब्द एक ही धातु से बने हुए हैं। समाधान, समाधि और नवीनता लाओ, और क्या करो? अपना ताज, तन मन धन जन और हिम्मत और पुरानी दुनिया, स्वभाव, नेचर, संस्कार विदाई दो। अच्छा, और बहुत बड़ा लेटर मत लिखना, फुर्सत नहीं है। किसको फुर्सत नहीं है? कौन से? शिव बाबा को? किसको फुर्सत नहीं है? तो कितना लेटर लिखना है? और ओके ना हो तो स्ट्राइक थ्रू, एक ऑप्शन आता है ना, स्ट्राइक थ्रू, ओके और स्ट्राइक थ्रू। और क्या कहा? माया लास्ट तक भी छोड़ेगी नहीं तुमको, पर तुम्हें क्या बनना है? विजय, मेरा एक तुम्हारा एक, मेरे हजार। और क्या कहा? नवीनता करो, हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ। ओके, ये नवीनता लाओ। और क्या कहा? माया भी हिल जाए, तुम ना हिलो। बाबा खुश है कि तुम हिम्मत रखते हो, अच्छी हिम्मत रखते हो। और स्व के प्रत्यक्ष करो तो बाप की प्रत्यक्षता स्वतः हो जाएगी। तो बाप की प्रत्यक्षता से पहले स्व की प्रत्यक्षता करो। क्यों नहीं होगा? भगवान साथ है, कमाल करके दिखा। और पीछे, नए वर्ष में नया स्वभाव, नए संस्कार। और तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक। और क्या कहा? हाँ, क्या क्या? तुम स्वयं भी जो परिवर्तन चाहते हो, परिवर्तन करके दिखाओ। और बाबा रिजल्ट पूछेंगे। और हर सप्ते में चेक करेंगे। वो बोलती है। और मदद के अधिकारी है। सहयोग दो, स्नेह दो। और भी कुछ था कि हो गया पूरा? हाँ, रूहानी ड्रिल करा एक घंटा। एक घंटे में एक मिनट? आर यू श्योर? कारण नहीं चलेगा। कौन से कारण? चार कौन से कारण बताए मुरली में? चार कारण कौन से? कारण कौन से? चार कारण कौन कौन से? स्व के कारण, साथियों के कारण, संगठन के कारण, परिस्थिति के कारण। चार कारण। और क्या बोला? मन के मालिक बनो, मन को ऑर्डर दो। एक सेकंड में परमधाम पहुंच जाओ, एक सेकंड में राज्य में पहुंच जाओ। मन शांत और मन शक्तिशाली, तब ऐसा होगा। और
तो
डबल पुरुषार्थी को ही गोल्डन कप मिलेगा, बाबा बनवा रहे मिलेगा उनको। तो फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे, 12 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं मुरली को। सबसे पहली बात, नववर्ष, नववर्ष को देखते हुए तुम्हारे आंखों के सामने, नैनों के सामने क्या आना चाहिए? नवयुग। जैसे इस वर्ष के लिए कहते हो आया कि आया, वैसे नवयुग के लिए तुम्हें अनुभव हो कि आया कि आया। यह स्मृति को समीप लाओ, नवयुग की स्मृति को समीप लाओ। नवयुग की सीनरी सामने दिखाई दे, तन मन धन जन का श्रेष्ठ भाग्य, प्राप्तियों का भंडार और चमकीली ड्रेस। इतनी बातें थी। जब ये सोचते हो कि नए वर्ष में जा रहे हो, अब ये सोचो हम नए युग में जा रहे हैं। तो नया वर्ष जब सामने हो तो नए युग को याद करो, नए युग की स्मृति, नए युग की याद, नए युग की पैरवाइश, नए युग में जो जो होने वाला है वहां का भाग्य, वहां की प्राप्तियों का भंडार क्या क्या है, निरंतर इस चिंतन में रहो। कैसी बेहद की दृष्टि है बाबा, यहां का कुछ देखते नहीं, किसी और जगत का देख रहे। यहां तो तुमको कैसे रहना है? सुबह की साकार मुरली, तुम वनवाह में हो, अच्छे कपड़े इधर तो उधर, अलमारी में दो कपड़े कम हो जाएंगे, इधर शौक नहीं रखना है, नहीं तो उधर कम हो जाएगा, बोला ना आज सुबह। तो तुम वनवाह में हो, ये संसार क्या है? खोखा। संसार क्या है? खोखा, कुछ नहीं है इसमें, खोखा, बोलो ना सुबह। इस संसार में रहते हुए उस संसार को याद करना। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहता है, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूं वो इस दुनिया का राज्य नहीं है वो। I talk to you of the kingdom which did not belong to this world. वो इस संसार का है ही नहीं, वो कोई और राज्य है। तो सतयुग के संस्कार यदि इमर्ज करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? सतयुग की जानकारी लेनी पड़ेगी, सतयुग में क्या क्या होता है उसके विषय में चिंतन करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, सतयुग की ड्रिल करनी पड़ेगी, सतयुग के चित्र देखने पड़ेंगे, सतयुग के विषय में पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। 2 फरवरी 1980 और 7 फरवरी 1980, ये दो मुरलियां हैं कंप्लीट सतयुग पर, जिसमें केवल सतयुग में क्या होने वाला है उसकी चर्चा है। 2 फरवरी 1980 और 7 फरवरी 1980, एक में सतयुग में क्या क्या है उसकी पूरी चर्चा है, और दूसरे में संगम युग और सतयुग, संगम युग और सतयुग, इनमें क्या अंतर है उसकी चर्चा है। तो सतयुग की मुरलियां पढ़ना, सतयुग के गुलजार दादी के द्वारा जो संदेश है वो पढ़ना। स्पार्क में किताब है संपूर्ण सतयुग के विषय में, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, क्या कैसा होगा, सब कुछ उसमें है। और इस पर कभी एक क्लास भी कराई थी पांडव भवन ने, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो केवल सतयुग के विषय में थी। वहां की हर एक बात कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके तो विमान से लेके तो करेंसी से लेके सब कुछ। तो सतयुग के संस्कार इमर्ज करने के लिए ज्ञान, चित्र, ऑडियो, वीडियो, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, चर्चा, देखना, आह्वान, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो जब इस दुनिया को और कंपैरिजन, इस संसार में कुछ भी देखो तो ये सोचो कि उस दुनिया में क्या होगा। यहां पे दूध देखो तो क्या सोचो कि वहां पर दूध का ट्रांसपोर्ट कैसे होता होगा, कैसे आता है दूध, हेलीकॉप्टर से, मुगलियों में आता है ना। यहां के फर्नीचर देखो तो वहां के फर्नीचर याद करो, यहां के मकान देखो तो वहां के मकान याद करो, यहां की ड्रेस देखो तो वहां का ड्रेस याद करो। हर चीज जो यहां की देखते हो वहां वो चीज कैसी होगी इसका चिंतन करो। यहां भोजन ऐसा है, वहां का भोजन कैसा होगा, यहां के संबंध ऐसे, वहां के संबंध कैसे होंगे, यहां रोने की दुनिया है वहां क्या करते होंगे, रोते होंगे क्या। लक्ष्मी नारायण प्रभाकर भाई अभी अभी बता रहे थे किसी मुरली में, बाबा ने कहा भले लक्ष्मी नारायण रोए पर तुमने रोना चाहिए। तो वो राज्य कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, वो कालखंड कैसा होगा, पवित्रता कैसी होगी, व्यक्तियों के संबंध कैसे होंगे आपस में, उसका चिंतन। तो नव वर्ष को देखते हुए किसको आंखों के सामने लाना है, नवयुग को लाना है, नवयुग की प्राप्ति या नवयुग के संस्कार, नवयुग की स्मृति या नवयुग की बातें, नवयुग की वो देवत्व के संस्कार, वो स्वर्गिक छटा, वो प्रकृति कैसी होगी वहां पर, वो पढ़ाई कौन सी होगी वहां पर, वो राजमहल राज प्रासाद कैसे होंगे, वो पुष्पक विमान कैसे होंगे, वो पहाड़ कैसे होंगे, वो पंछी कैसे होंगे, लेन देन कैसी होगी, व्यवहार व्यापार आचार विहार कैसा होगा, सब याद करना है। तो जब नववर्ष के बारे में सोचते हो तो क्या याद आना चाहिए, नव युग, ये सबसे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट विदाई, विदाई, पांच चीजों को विदाई देने के लिए कहा, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, पुरानी चाल, माया और व्यर्थ। बाबा ने प्रश्न पूछा, माया अच्छी लगती है, माया से प्यार है, माया को रखना चाहते हो, तो विदाई देना। आज सुबह की मुरली में है ना, शायद तुम्हें विकारों से बहुत दूर चले जाना है, आज ही है ना, तुम्हें विकारों से बहुत दूर चले जाना है, तो विदाई दे देनी उस संस्कार को जो रुलाता है, उस स्व के संस्कार को जो डिस्टर्ब करता है, उस स्व के संस्कार को जो आत्मग्लानी का भाव लाता है, उस स्व के संस्कार को जो हीनता का भाव हृदय में खींच कर लाता है, वो संस्कार जो समय बर्बाद करता है, उस संस्कार को विदाई, उस संस्कार को बाय बाय, उस स्वभाव को जो स्वभाव हमारा ओरिजिनल नहीं है, जो जबरदस्ती बनाया गया, उस चाल को जो चाल धोखे वाली, उस माया को, उन विकारों को जिसने बहुत पीड़ा दी है, व्यथा पहुंचाई है। इस संसार में हर मनुष्य की जीवन कथा तो क्या कथा नहीं, व्यथा है, जीवन कथा है ही नहीं, जीवन व्यथा है। और लास्ट व्यर्थ, कौन कौन से व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, बाबा ने कहा, तो जाएंगे तो करेंगे तो हो जाएगा, तो जहां बाप साथ है वहां तो आ नहीं सकता। तो विदाई अर्थात डिवोर्स, विदाई अर्थात तलाक, विदाई अर्थात छोड़ देना, विदाई अर्थात त्याग कर देना, विदाई अर्थात तिलांजलि दे देना, विदाई अर्थात हमेशा के लिए दूर हो जाना, विदाई अर्थात विमुख हो जाना, विदाई अर्थात मुड़कर फिर देखना ही नहीं, जो चीज छोड़ दी वो छोड़ दी। यदि हमने जो उल्टी की है वो उल्टी कोई थाली में सजा कर दे तो खाएंगे क्या? सलाद बिलाद डाल के मसाला ऊपर से खाएंगे? जो छोड़ दिया, जो त्याग दिया वो छोड़ दिया, जिन गलियों को छोड़ चुके अब वापस उन गलियों में नहीं जाना है, वो मार्ग हमारा नहीं। छेद होगा तो धारणा नहीं होगी। शुभ कान झोली में छेद होगा तो धारणा नहीं होगी। सारे छेद को क्या कर दो? सिल दो, बुझा दो। तो विदाई, बाय बाय, टाटा, सायोनारा। ये दूसरी बात, बाबा ने कहा तुम डबल काम करने आए हो, बधाई देने और विदाई लेने। तीसरी बात, हिम्मत। इस कार्य के लिए क्या चाहिए? हिम्मत, दृढ़ संकल्प, परिवर्तन की शक्ति, हिम्मत। हाथ उठवाए, किस किस को हिम्मत है? हाथ तो सभी उठा देते हैं, जिसको प्रश्न समझ में नहीं आया वो भी हाथ खड़ा करता है। सबने किए तो हमको भी करना चाहिए, पता नहीं कोई अच्छी बात होगी वहां पर। हाथ उठाने के भी मार्ग है, वो दूसरी बात है। तो हिम्मत, इसमें बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प नहीं लाने। वापस हुई बात, यहां पे तो नहीं आना चाहिए, हो जाएगा, कर लेंगे। हिम्मत तुम्हारी, एक कदम और हजार कदम मेरी मदद, तुम्हारा एक और मेरा हजार, पर एक चाहिए। अगर अब ये कहे कि हमें एक भी नहीं देना है, तुम ही सब करो, फिर नहीं होगा। संकल्प तो करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल संकल्प। वो करेंगे तो ऊपर से मदद आएगी, परिस्थितियां ऐसी निर्माण होगी कि उस विकार से, उस संस्कार से, उस चाल से, उस व्यर्थ से निकलने की पावर अपने आप आ जाएगी। ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसे शब्द सुनेंगे, ऐसी महान आत्माओं के दर्शन होंगे, ऐसे लोगों का, तीव्र पुरुषार्थियों का संग मिलेगा कि अपने आप पावर आत्मा में भरेगी। क्योंकि आत्मा को पावर चाहिए, द स्पिरिट इज रेडी बट फ्लैश इज वीक। हिम्मत जुटानी है। तो हिम्मत, और बिना हिम्मत के अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती। यहां तो बहुत हिम्मत चाहिए, जितनी हिम्मत माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए नहीं चाहिए, जितनी हिम्मत किसी खूंखार जानवर से लड़ने के लिए नहीं चाहिए, उतनी हिम्मत यहां विकारों से लड़ने के लिए चाहिए। और ये जो लड़ाई लड़ता है वास्तव में वही हिम्मतवान है, वही महावीर है। बाहुबल, बुद्धिबल और आत्मबल, तीन प्रकार के बलों की चर्चा है महाभारत में। एक तो है बाहु, पर बाहुबल से भी शक्तिशाली है बुद्धि, जो बुद्धि से प्लानिंग करता है। एक लड़ाई तो वो होती है जो युद्ध के मैदान में खेली जाती है, और दूसरी बुद्धि से खेली जाती है, प्लानिंग से, चतुर्य से, चतुराई से, पर उस लड़ाई से भी ऊपर की एक लड़ाई है जो योग बल की लड़ाई है। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें सारे दुनिया को जगाना है तो तुम्हें कितनी योग की शक्ति होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तुम्हें सारी दुनिया को जगाना है तो तुम्हें कितनी योग की ताकत होनी चाहिए। योग की ताकत जमा करनी है, बिना योग के मीठा नहीं बन सकते। स्पिरिचुअल पावर्स आत्मा में भरनी है। तो तीसरी बात हिम्मत, चौथा नव वर्ष में नवीनता। नवीनता नंबर वन, दो नवीनता बताइए। नवीनता नंबर वन, हिम्मत का पांव हिलने नहीं देना, चाहे माया हिल जाए पर तुम्हारा पांव हिलना नहीं चाहिए। तो स्वयं को और स्वयं की हिम्मत को हिलने नहीं देना, परंतु उस हिम्मत का पोषण करना पड़ेगा उनको, तो उस हिम्मत को थोड़ी खुराक देनी पड़ेगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ऐसी आएगी कि हिम्मत कम कर देगी। ऐसे ऐसे व्यक्ति उभर कर सामने आएंगे जिनके साथ हमारा एकदम कड़ा हिसाब किताब है, और वो अगर ज्ञानी है और तपस्वी और योगी है और ज्ञान की हर गहराई को जानता है और हम भी जानते हैं और फिर भी हिसाब है, तो और बड़ी मुश्किल है। हिसाब अपनी जगह पर, ज्ञान अपनी जगह पर। जैसे जीवन की यात्रा है जन्म और मरण, उसी तरह हिसाब की भी यात्रा है जन्म और मरण, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो हर हिसाब किताब का भी एंड पॉइंट है। ऐसे नहीं समझना ये चालू रहेगा अनंत काल तक, पता नहीं कब छूटेंगे इससे। तो नवीनता कौन सी लानी है इस वर्ष? आज एक तारीख है, हिम्मत की नवीनता। हिम्मत कम नहीं होने देना। संसार में लोगों के साथ क्या क्या हो गया पर हिम्मत नहीं छोड़ी उन्होंने। एक छोटी कन्या दिल्ली की, आयशा, सुना है उसके विषय? 15 साल की थी, शरीर छोड़ दिया, पर 15 साल की जब थी, भी 2 साल पहले 3 साल पहले शरीर छोड़ दिया। वो बचपन से एक ऐसे बीमारी के साथ जन्म ली, कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें उसमें शरीर में प्रतिकार शक्ति बहुत कम थी। 8 साल की तब जब थी तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद में कई बार भर्ती, कई बार एडमिशंस, शरीर का इतनी छोटी आयु में इतना कड़ा हिसाब किताब। पर जब वो 12 साल की हुई तब से वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। 2-3 साल उसने छोटी सी किताब भी लिखी है और अभी तो वो चली गई। इतनी छोटी आयु और उसने कई जगह कहा है कि कैसे उसका एकदम सांस फूल जाता था और कैसे उसको अचानक हॉस्पिटल लेके जाया जाता था और कैसे उसको सारा मास्क, ऑक्सीजन, ये वो सब डाला जाता था। बट वो हाउ ही शी एंजॉयड हर जर्नी ऑफ लाइफ, वो उसके आप लेक्चर सुनोगे तो लगेगा इतनी छोटी सी लड़की, और अभी तो चली गई है भी नहीं अभी वो, पर हिम्मत उसकी जबरदस्ती, हार नहीं मानी कभी भी। नहीं तो किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो आधा तो वहीं ठंडा हो जाता है, कारण मिल जाता है ना पुरुषार्थ कम करने का, ना करने का नहीं, कम करने का। पर संसार में ऐसे ऐसे लोग हुए हैं और है भी कि उनके पास सब तरफ से वो दुखी हो गए, नाराज हो गए, हार गए और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। आयशा चौधरी, इंडियन, गुड़गांव, माय लिटिल इपिफैनी, छोटी सी किताब लिखी है उस छोटी सी लड़की ने, इपिफैनी। इपिफैनी अर्थात प्राकट्य, मैनिफेस्टेशन, जैसे कोई अवतार प्रकट होता है। माय लिटिल इपिफैनी छोटी सी किताब है। जब वो बीमार थी, बेड पर पड़ी रहती थी, अपने विचार लिखती रहती थी, उसी की किताब बन गई एक। तो हिम्मत न हारना, और हमारे पास स्वयं भगवान है हिम्मत देने वाले, तो हमें तो हिम्मत हारने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जब जब गिरो फिर खड़े हो जाओ। जैसे एक व्यक्ति है, बिजनेस करता है, और एक बार बिजनेस में ऐसा लॉस हो गया, दिवालिया निकल गया, बैंकक्रप्ट हो गया, उदास हो गया, सारा लॉस हो गया, सारी कंपनी डूब गई। उदास बैठा हुआ था अमेरिका के किसी एक सड़क पर, एक जगह पर, उदास, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, जीवन का अंत कर दूं। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है, क्या कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं क्या, क्या प्रॉब्लम है? तो वो अपनी बात बताता है। वो कहता है, एक काम करो, मैं तुम्हें एक चेक देता हूं, और उसको वो $5 million का चेक देता है, $5 million का, और कहता है ये चेक ले लो और तुमको काम आएगा वो। और वो व्यक्ति चला जाता है और कहता है कि एक साल के बाद तुम यही मुझे मिलना। और वो व्यक्ति पढ़ता है, चेक पे लिखा रहता है $5 million, नेम डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर, रॉकफेलर रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में गिना जाता है, जॉन डी रॉकफेलर, विदेश का, जैसे एंड्रयू कार्नेगी की है, जैसे अभी बिल गेट्स है, उस समय जॉन डी रॉकफेलर सबसे अमीर आदमी। तो ये व्यक्ति के पास चेक आ जाता है, सोचता है अभी मैं वापस अपना सब चालू करता हूं, पर एक दूसरा संकल्प भी आता है, चेक तो भाई, तो क्यों ना मैं चेक को रख दूं और अपने आप से सब चालू करूं, जब भी जरूरत पड़ी चेक को ले लूंगा, पैसे तो है, परंतु पैसे मैं क्यों अभी यूज करूं, बाकी भी और मेरे पास साधन है। फिर से हिम्मत आती है, फिर से अपना बिजनेस चालू करता है, फिर से बहुत मेहनत करता है, और हर बार सोचता है चेक लूं क्या, सोचता है नहीं और थोड़ी मेहनत करूं, और एक साल में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है, जैसे उसका पहले था बिजनेस। और एक साल हो जाता है, वो सोचता है चलो कम से कम उस आदमी का धन्यवाद तो करूं, उसने कहा था इसी जगह इसी स्थान पर उसी डेट को उसी समय मिलना, और वो चेक लेकर आता है उसको दिखाने के लिए, देखो बिना तुम्हारे चेक को यूज किए मैंने फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया। और वो वेट करता है और वो आदमी समय में आ जाता है वहां पर। जैसे वो आदमी आता है, उसके पीछे पीछे एक नर्स आती है, और वो नर्स उसको पकड़ती है, वो कहती है ये पेशेंट है, इधर मेंटल हॉस्पिटल है, वहां का ये पेशेंट है और इसकी बीमारी है, ये खुद को कहता है मैं जॉन डी रॉकफेलर हूं, और उसके पास में फेक झूठी जाली चेकबुक है। ये तो पेशेंट है, ये भागता है हॉस्पिटल से, मैं इसको फिर से लेने आई हूं, रोज किसी ना किसी को ठगता है। तो ये व्यक्ति सोचने लगता है, चाहे वो पैसे थे या नहीं थे, वो चेक था या ना था, पर हिम्मत तो आ गई। तो हिम्मत, ये संकल्प कि वहां पैसे रखे हुए हैं हमारे पास है, ये संकल्प कि हमारा रखवाला वो है, योर वेरी हेयर इज नंबर्ड, जीजस अपने शिष्यों को कहता है जाओ मेरा संदेश सुना, वो कहते कैसे जाओ, सब तुम्हारे विरोधी है, वो कहते तुम्हारे सिर पर जो बाल है ना मैंने गिन के रखे, कुछ नहीं होगा, जाओ, Your very hair is numbered, कुछ नहीं होगा, कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। तो हिम्मत, यदि जीवन हिम्मतहीन हो गया है तो फिर से हिम्मत जुटानी है, टू मस्टर अप करेज अगेन, गिरे फिर से उठो, उदास हो गए फिर से उठो, पुरुषार्थ ढीला हो गया, नया वर्ष है, नया पुरुषार्थ चालू करो, इस नवीनता को लाओ बाबा ने कहा, इसमें कोई तो नहीं लाना है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मेरा तो हाँ है, वाह वो सब नहीं लाना है, स्टॉप। तो नवीनता, पुरुषार्थ में नवीनता अर्थात हिम्मत। तो सबसे पहली बात बताई नवयुग, दूसरी बात बताई विदाई, तीसरी बात बताई हिम्मत। हिम्मत को लाना है। और चौथी बात बताई नवीनता। हिम्मत के विषय में व्यर्थ के लिए चर्चा की है, नवीनता में हिम्मत न छोड़ने के लिए, हिम्मत का पाव वैसा ही रखने के लिए चर्चा की है बाबा ने। माया हां हिल जाए, तुम्हारा हिम्मत का पाव ना हिले, यह है नवीनता। यह चौथी बात। उसके बाद में तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? धंधा, बिजनेस, तिजारत, विश्व परिवर्तक और विश्व कल्याणी। लंदन कल्याणी नहीं, लंदन परिवर्तक नहीं, भारत परिवर्तक नहीं, अमेरिका परिवर्तक नहीं, इंडिया परिवर्तक भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण में कहा, माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल। माई इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट इंडियन बट इंटरनेशनल। मैं केवल भारत के लिए नहीं आया हूं, भारत कल्याण मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य वैश्विक है, यूनिवर्सल, सार्वभौम, जगत के कल्याणार्थ, जागतिक है। तो भावना ने कहा तुम कौन हो, अपना ऑक्यूपेशन याद रखना, अपने बिजनेस को भूलना नहीं। वो संसार के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अपना ऑक्यूपेशन भूलते हैं क्या? कभी रात में अगर उसको उठाओ तो बोलेगा अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं ये हूं, ऐसा बोलता है कोई? नहीं भूलता है। तो शायद क्या हमने इसको अपना ऑक्यूपेशन बनाया? ऑक्यूपेशन क्या है? एक प्रोसेस है हिप्नोसिस की। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो उसके मन में डाला जाता है तुम इंजीनियर हो, इंजीनियर, पूरा एक सम्मोहन क्रिएट किया जाता है। और फिर वो उसी तरह के लोग, उसी तरह की किताबें, और सम्मोहित होकर वो बाहर निकलता है। जैसे शादी भी क्या है? एक सम्मोहन ही है। वो घोड़ा, फिर उसको लगता है कि मैं कुछ हूं अभी दूल्हा। शादी ये सब करने की क्या जरूरत है? ये दूल्हा, ये दुल्हन, खत्म, साइन करो, यू आर मैरिड, खत्म। वो पूरा सम्मोहन क्रिएट किया जाता है, पूरा समाज। तो वो जितना बड़ा और विस्तार से होगा उतना वो मन के अंदर घुसता है, अंदर ही अंदर, हाँ ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, फिर उसके रिश्तेदार, फिर इसके रिश्तेदार, फिर वो घोड़े पे बैठता है तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं अब मैं कौन हूं। सब लोग मुझे देख रहे, आज तक कोई मेरी तरफ देखता नहीं था, आज देखो उसका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ जाता है, उसकी छाती फूल जाती है। तो सम्मोहन क्रिएट होता है एक, तो ये पूरे सम्मोहन से फिर बाद में वो जो संबंध बन जाता है वो उससे निकल नहीं पाते। कितना भी सोचे मेरी बहन है, बहन है, बहन है, पर अंदर है ये पत्नी है। तो सम्मोहन, हिप्नोसिस, ऑक्यूपेशन। क्या विश्व कल्याण को हमने अपना धंधा, तिजारत बनाई है कि मुझे विश्व कल्याण करना है, ये ऑक्यूपेशन है मेरा, उसमें नुकसान लॉस कितना हुआ वो देखते, आज कितनों का कल्याण किया। कुछ दिन पहले मुरली में था ना, रोज एक को पाप का परिचय दो, चार दिन पहले एक मुरली थी अभी अभी। तो धंधा क्या है तुम्हारा? विश्व परिवर्तन। इसको भूलना नहीं। और फिर बाबा ने एक चैलेंज की बात की है, तुम्हें चैलेंज करना है किसको? नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंज। किसको चैलेंज? प्रकृति को। प्रकृति जीत बनने का तुमको चैलेंज करना है। तुम प्रकृति जीत हो, स्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो, यह तुम्हारा चैलेंज है। प्रकृति को भी जीतने का चैलेंज। और फिर बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट, स्लोगन, एक स्लोगन दिया। कौन सा बोला किसी ने थोड़ी देर पहले? चैरिटी बिगिंस एट होम। होम अर्थात शरीर, होम अर्थात आत्मा, होम अर्थात संकल्प, होम अर्थात फीलिंग्स, होम अर्थात इमोशंस, होम अर्थात भावनाएं, होम अर्थात स्मृति, होम अर्थात दृष्टि, होम अर्थात वृत्ति, होम अर्थात कल्पना, होम अर्थात स्वप्न, संस्कार, होम अर्थात बुद्धि, होम अर्थात मन। यहां से पुण्य का कार्य चालू करना है, स्व से। दूसरों से नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या करते हैं, ये बात की बात है। मुझे केवल स्वयं को देखना, इस संसार के एक ही व्यक्ति को मैं बदल सकता हूं और वो मैं हूं खुद। और जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलता, दूसरों को बदलने की कोशिश दुख को निमंत्रण देना है। दुख दूसरा बदल जाए, ये एक्सपेक्टेशन संबंधों में सभी दुखों का कारण है। ये मेरे मुताबिक चले, मैं इनको कुछ कहूं तो ये माने, मेरी हर बात का रिस्पॉन्ड करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, मेरा अटेंशन दे, अगर कोई मैसेज करो तो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। नहीं आते हैं तो सूक्ष्म उदासी है, बहुत सूक्ष्म उदासी, जो अवसर की तलाश में है। अवसर मिलते ही प्रकट होगी कि तुमको हमने ऐसा किया था, तुमने जवाब नहीं दिया था। याद रखना, गिन गिन कर हिसाब लेने की आत्मा की आदत है। स्लोगन, चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर उसके बाद में एम, नेक्स्ट पॉइंट है, तुम्हारा एम क्या है, क्या एम, बाप समान बनना। तुम्हारा एम क्या है, स्व को प्रत्यक्ष पहले करना और फिर बाप को प्रत्यक्ष करना। बिना स्व को प्रत्यक्ष किए बाप को प्रत्यक्ष तुम नहीं कर सकते। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, विजय, हमारी विजय। क्या कहा पांडवों के लोगों, माया अंत तक आएगी परंतु हम कौन है, विजयी पांडव। महाभारत में दिखाया है शुरुआत से लेकर अंत तक पांडवों पर निरंतर अन्याय हो रहा है, बचपन से लेकर दुर्योधन, दुशासन, शकुनी कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं, बेचारा उसमें कर्ण भी फंसा हुआ है, और ये लोग सहन कर रहे हैं, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। युधिष्ठिर कहता है अपने भाइयों को, भीम को, यदि तुम भी वही करो जो दुर्योधन कर रहा है तो उसमें फिर हमें अंतर क्या रहेगा, कर तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे, ये भी शक्तिशाली थे, शूरवीर थे, परंतु सहन करते गए। जब तक सारे रास्ते बंद ना हो गए तब युद्ध, परंतु विजय अंत में पांडवों की ही हुई। तो बाबा ने कहा, यह मत सोचो कि माया का आना बंद हो जाएगा, यह मत सोचो कि सारे हिसाब किताब बंद हो गए, यह मत सोचो कि अभी कुछ और आएगा नहीं, अभी तो हिसाब किताब के पहाड़ गिरने वाले हैं। जैसे आज की मुरली में देवता है थालियां भर भर के आते हैं, वैसे हिसाब किताब थालियां भर भर के निकलेंगे समुन्द्र से, शरीर के हिसाब, संबंधों के हिसाब, व्यक्तियों के साथ हिसाब, कुछ पुराने संस्कार वापस प्रकट होंगे, जो हमने सोचा था छूट गए, समाप्त हो गए, वापस वापस आएंगे। इसके लिए स्वयं को तैयार रखना है, चौकस चौकन्ना जागृत। तो ये एक पॉइंट विजय। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, हमारी डिक्शनरी, हमारी विजय। और हमारी डिक्शनरी में क्या नहीं है, कारण नहीं है, और क्या नहीं है, समस्या नहीं है। और हमारी डिक्शनरी में क्या है, समाधान है। और हमारी डिक्शनरी में क्या है, निवारण है। कारण देना, एक्सक्यूजेस, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि वो था अमृत वेला, क्यों नहीं उठे, रात में सेवा ज्यादा थी, ठंड बहुत थी, लेट बहुत हो गया था, सेवाएं ज्यादा थी, थकान ज्यादा हो गई थी, ऐसा तो कम ही बोलते हैं, भोजन थोड़ा ज्यादा कर लिया, भोजन तो एकदम अपना पर्सनल इलाका है, उसमें कोई आंख नहीं डाल सकता। वो मेरा एकदम आंतरिक है, उसकी ऐसी खुलेआम कारण के रूप में कभी चर्चा नहीं करेगा कोई एकदम व्यक्तिगत पर्सनल है वो। तो कारण स्व के कारण, साथियों के कारण, संगठन के कारण और परिस्थितियों के कारण। परिस्थिति ऐसी थी, साथी ऐसा मिल गया, क्या करे, पुरुषार्थ ही नहीं करने देते। हम तो करना चाहते हैं परंतु बॉस ही ऐसा है, साथी जूनियर्स ऐसे हैं कि सुनते नहीं बात, और रूममेट तो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो कारण, कारण बताना एक आदत है। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये था। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये था। एक बड़े पादरी थे, तो वो एक गांव में पहुंचे, और जिस भी गांव में जाते थे उनका बड़ा भव्य स्वागत होता था। एक गांव में गए तो वहां पे कुछ भी स्वागत नहीं हुआ, छोटा सा चर्च था, और चर्च का जो छोटा पादरी था उसने भी कोई स्वागत नहीं किया। और छोटा जो पादरी था उसकी एक आदत थी, जब भी उसे कोई प्रश्न पूछे जाए तो वो कहता था इसके हजार कारण है, तकिया कलाम, मतलब एक ही बात रिपीट करना है। जब भी कुछ पूछो तो क्या कहता था, इसके हजार कारण है। और ये बड़ा पादरी जहां भी चर्च में जाता था घंटियां बजती थी, यहां घंटियां कुछ नहीं बजी, ना स्वागत हुआ ना कुछ हुआ। तो वो पूछता है उसको वहां आने के बाद, ऐसे कैसे आपके यहां मैं आया गांव में और आपके चर्च में मेरा स्वागत ही नहीं हुआ। तो वो कहता है इसके हजार कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमारे पास घंटी नहीं है। तो बड़ा पादरी कहता है आप घंटी नहीं है, बाकी कारण मत बताओ, छोड़ दो बाकी कारण की जरूरत ही नहीं है, मेन तो घंटिया ही नहीं है, तो फिर अब क्या पूछू आगे। तो कारण नहीं बताना, सहन कर लेना, चुप रहना। शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी लोगों को हो जाए कि ये गलत है, पर कारण बताना अर्थात कमजोरी प्रकट करना। हां कहीं कहीं उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ये बड़ा टॉपिक है। कारण कहां बताने चाहिए, रियल है, क्योंकि जब भी कारण होता है उसको हम बड़ा ही तोड़ मरोड़ के अपनी सुरक्षा के हिसाब से बताते हैं। ऐसा नहीं बताते कि मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न हुआ, इस तरह की कोई, हम अपने विकारों की बड़ी सूक्ष्म से सुरक्षा करते हैं और उसको ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो एकदम रियल लगाए लगे। हाँ, ईश्वरीय भाषा का प्रयोग। अमृत वेला क्यों नहीं आए, तबीयत जरा शरीर साथ नहीं दे रहा था वो तो चलो वो नहीं, शरीर थोड़ा सा बुखार टाइप लग रहा था, अभी भी लग रहा है, थोड़ा देख लो एक बार। और बाबा को भी तो पता है, रात में ही बोल दिया था बाबा को सोते समय, बाबा थोड़ा बुखार टाइप लग रहा है, अमृत वेले का भरोसा नहीं है। पहले संकल्प करके ही सोए थे, ये भी कर सकते थे बाबा बुखार है कुछ भी हो, पर हम तो उठेंगे, जरूर उठा देना। तो हिम्मत, दृढ़ संकल्प, परिवर्तन की शक्ति, कितनी ढेर सारी पॉइंट्स यहां वहां बिखरी पड़ी है मुरली में जिसकी बाबा चर्चा कर रहे हैं। तो किस पॉइंट पर थे हम, डिक्शनरी, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। नेपोलियन कहता था असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में, मेरे लिए इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं, मैं जो संकल्प करूं वो होगा पूरा, जो चाहूं वो मुझे मिलेगा। बिफोर मी माउंटेन्स विल क्रम्बल, आई विल ड्रिंक द एंटायर ओशन। विवेकानंद ने एक जगह कहा है सारा समुंदर पी जाऊंगा, सारे पर्वत मेरे सामने नीचे गिर पड़ेंगे, ऐसी हिम्मत। तो डिक्शनरी की बात। उसके बाद में नवीनता नंबर दो, पहले नवीनता नंबर एक बताई, हिम्मत नहीं छोड़नी है, हिम्मत का पाव हिलना चाहिए, नहीं हिले माया हिल जाए। यहां एक हिम्मत बताई, स्व परिवर्तन, साथी परिवर्तन और विश्व परिवर्तन, ये एक नवीनता लाओ इस वर्ष में। शुरुआत है अपने से, मुझे बदलना है, इस जो नेचर जो है मेरी, रोने की, उदास होने की, रूठने की, नाराज होने की, ब्लेम करने की या सेल्फ विक्टिमाइज होने की, खुद ही को दोषी ठहराना या दूसरों को दोषी ठहराना, साथ साथ स्व साथी और विश्व, ये तीन। और लास्ट पॉइंट 12th चेकिंग, कौन सी चेकिंग करो? ओके स्ट्राइक थ्रू, नॉट ओके ज्यादा लंबा जोड़ा खत नहीं लिखना बाबा को। क्या लिखेंगे बाबा? आई एम ओके, आई एम भी नहीं, बस ओके ओके, आज सब ठीक रहा, अमृत वेला शक्तिशाली रहा, मुरली का चिंतन किया दिन भर, मनन किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, किसी से व्यर्थ बातें नहीं की ना सुनी, नुमा शाम का योग शक्तिशाली रहा, रात्रि क्लास भी किया, बीच बीच में योग का अभ्यास किया, सुबह जो आज अव्यक्त महावाक्य उच्चारण हुए, विशेष पुरुषार्थ अव्यक्त अलौकिक और अंतर्मुखी, तीन बातें थी उसमें, उसका भी अभ्यास किया, तो रात में क्या लिखना है बाबा को? ओके, अगर इसमें से कुछ गड़बड़ है तो स्ट्राइक थ्रू, नॉट ओके। और जो ओके लिखते हैं उनको बाबा क्या करते हैं, ये कौन बताएगा? उसके पहले और एक चीज करते हैं, वहां बच्चे वहां तो गीत गाते, हाँ बाबा वर्षा करते हैं, स्नेह की और दुआओं की वर्षा होती है, ऊपर से फूल बरसने लगते हैं, रात में सो गए तो पूरा बिस्तर फूलों से भरा हुआ, क्योंकि दिनचर्या इतनी श्रेष्ठ थी, ऊपर से देवता है किन्नर, वो दिखाते ना शास्त्रों में, जब भी कोई अच्छा काम करता है ऊपर से देवता प्रकट हो जाते, कहां से आते पता नहीं, और फूल की वर्षा चालू कर देते, कोई देवी ने किसी को मार दिया, महिषासुर मर्दिनी, ऊपर से देवता प्रकट, फूलों की वर्षा चालू, रावण की मृत्यु देवता प्रकट, कंस की मृत्यु देवता प्रकट, फूल ही फूल। तो वैसे भी माया को हरा दिया, भगवान प्रकट और फूल ही फूल। और वैसे भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे पारितोषिक दिया जाता है ना, दिया जाता है ना, उसको मेडल दिया जाता है, चीफ ऑफ रूहानी आर्मी, चीफ ऑफ रूहानी आर्मी।